तीसवां उकाओ क्षितिज शर्मा 1994। पृष्ठ संख्या 100। उकाओ श्यामा नामक एक संघर्षशील प्रवर्तीय नारी की संघर्षपूर्ण कथा को लेकर चला है। लेखक क्षितिज शर्मा की भाषा और कथा कहने का अंदाज आकर्षक है। गांव का माहौल यहां अपनी समग्रता के साथ आया है। प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा, झगड़ा आदि सभी मानवीय भाव यहाँ मौजूद हैं, पर इन सबसे ऊपर है इसमें चित्रित भोली भाली प्रवर्तीय जीवन की मेल मिलाप वाली वृत्ति। शैलेश मिटियानी तथा शिवानी के उपरांत क्षितिज शर्मा प्रवर्तीय अंचल के एक मुख्य हस्ताक्षर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। प्रस्तुत उपन्यास में पहाड़ की फसलों का समय, पहाड़ की जटिल खेती और उससे जुड़े हुए किसानों के सुख दुख की कथा को विस्तार से दिया गया है। कई बड़ी बड़ी चीजों पर छोटी छोटी असरदार टिप्पणियां कथा प्रवाह में अपने साहसिक रूप में उपस्थित है। एक जगह कहा गया है, इन्वर्टेड कमापन, भूख और जात का संबंध तो पेट से ही गुना जाने वाले हुआ तो कई स्थानों पर इस तथ्य को ध्वनित किया गया कि बिहार से आने वाले लोगों द्वारा ग्रामीण जनता का शोषण किस तरह से हो रहा है। कहा जरूर गया है कि उपन्यास का विकास होता है जहां औरत को ऊंचा दर्जा मिला हो और जाति जिंदगी में लोगों की गहरी दिलचस्पी हो, किस तरह से हो रहा। लेकिन लगता यह है कि उपन्यास का विकास ब्रैकेट में कम से कम भारत में वही होगा जहां ऊंची न सही औरत कम से कम हेयर न समझी जाए, उसके संघर्ष की सही और आत्मीय पड़ताल की जाए ताकि हम अपने समाज का निर्माण करने वाली इस महत्वपूर्ण इकाई के महत्व को समझ सकें। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ हंस, सितंबर 1994, पृष्ठ संख्या 88। इस दृष्टि से उकाओ तथा उसकी नायिका श्यामा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्यामा का जीवन संघर्ष एक अनवरत यात्रा है। यद्यपि हमारे यहाँ वायवी क्रांतियों की बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय नारियों का बहुतांश आज भी परंपराओं और मर्यादाओं की बेड़ियों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। श्यामा एक ऐसी भारतीय नारी है जो इन स्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह कहीं भी स्वयं को हालात और नियति के भरोसे नहीं छोड़ती। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह कोई न कोई राह निकाल लेती है। इस प्रकार जुझारूपन उसके चरित्र की एक पहचान बन गया है। श्यामा का पति एक अध्यापक, वह एक दूसरी अध्यापिका से विवाह कर लेता है। कोई दूसरी स्त्री होती तो टूट जाती या अपने अध्यापक पति के सामने घुटने टेक देती, परंतु श्यामा गोधन से आत्मीयता बढ़ाती है और अपने अध्यापक पति को मानो आह्वान देती है कि उसके बिना वह असहाय नहीं है। पृष्ठ संख्या 101। परंतु रानी खेत में गोधन की मृत्यु उस समय होती है जब श्यामा की कोख में उसका अंकुर पनप रहा होता है। श्यामा सिब्बू को जन्म देती है और वह बच्चा ही उसके जीने का आधार बन जाता है। बच्चे का लालन पालन और पोषण ही उसके जीवन का एक मकसद बन जाता है। वह सोचती है कि सिब्बू के ऊपर किसी पिता का हाथ होना चाहिए, अतः वह अधेड़ उम्र के गंगा दत्त से विवाह कर उनके गांव तिमली आ जाती है। गंगा दत्त की पहली पत्नी उसकी दीदी बन जाती है। वस्तुतः इस दंपत्ति के पास संतान नहीं थी, अतः निसंतानता के अभिशाप से बचने के लिए वे श्यामा को आश्रय देते हैं और श्यामा के बेटे सिब्बू को पुत्र रूप में अपना लेते हैं। इस दूसरी शादी को लेकर भी श्यामा में कोई अपराध बोध पैदा नहीं होता, वह उसे सहज स्वाभाविक रूप में स्वीकार करती है। यहाँ पुनः एक बार राजेंद्र यादव तथा प्रभा खेतान की उस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं दिखता कि जहाँ नगरों की उच्च वर्गीय संभ्रांत महिलाएं एक सिरे से लद्दड़ और परंपराओं की सलीब ढोने वाली हैं, वहाँ ग्रामीण जीवन के निम्न जातीय और निम्न वर्गीय स्त्रियों में परिस्थितियों से लड़ने की और जीवन से जूझने की एक अदम्य जिजीविषा मिलती है। श्यामा, मंदाकिनी, मोतीमा मस्तानी, चनूली जैसी नारियाँ इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। अन्य ग्रामीण परिवेश के उपन्यास, पृष्ठ संख्या 101। लोकार्पण। डॉक्टर विवेकी राय का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है। इसमें लेखक ने त्रिभुवन और गिरीश जैसे दो सामंतवादी पात्रों के आसपास कथा का ताना बाना बुना है। जल टूटता हुआ के मुहीब सिंह तथा अलग अलग वैतरणी के जसपाल सिंह की भांति यहाँ भी त्रिभुवन सिंह का जमींदारी का आतंक छाया हुआ है। इसकी नारी पात्र का शोषण न केवल गांव के लोग करते हैं, अपितु उसकी जाति का नारी पात्र भी उसका शोषण करना चाहता है। नारी पात्र विधवा है, अतः नारी पात्र न केवल उसके यौवन का उपभोग करना चाहता है, बल्कि उसके देह को जमींदारों के सुपुर्द कर उसकी खुशामद भी कराना चाहता है। उसके बेटे को चरवाहा बनाकर उसकी मजबूरी पर मौज उड़ाना चाहता है। इसके अतिरिक्त राग दरबारी उपन्यास की भांति गांव में फैल रहे काइयापन, हरामीपन, निःशेष होते जीवन मूल्य, शिक्षा की अवनति, गति में चलने वाली अनेक अनीतियों, चकबंदी, चुनाव, थाना पुलिस, कचहरी जैसे मुद्दों के द्वारा लेखक ने आज़ादी के बाद कांग्रेस कल्चर की जो नेतागिरी विकसित हुई उसको स्पष्ट करने का यत्न किया है। पैराग्राफ चेंज। हिमांशु श्रीवास्तव कृत नदी फिर बह चली उपन्यास का पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध का तकरीबन एक चौथाई हिस्सा ग्रामीण परिवेश को समेटता है। इस उपन्यास की पर्वतीया कहार जाति की एक स्वाभिमानी गतिशील जुझारू स्त्री है। उसका बचपन सौतेली माँ के अमानुषिक त्रास को सहते हुए बीता। जगलाल से विवाह होने पर उसके जीवन में सुख के कुछ दिन आए। जगलाल पटना में ड्राइवर था, पर बुरी संगत और बुरी आदतों के कारण वह खून के एक मुकदमे में फंस जाता है और उसे जेल हो जाती है। जगलाल के जेल चले जाने पर पर्वतिया जगलाल के गांव चुरानमनपुरा जाती है, पृष्ठ संख्या 102, और अन्य किसी पर निर्भर न रहते हुए मेहनत मजदूरी करके अपने दो बच्चों को पालती है। पर्वतिया एक चेतना संपन्न नारी है। गांव के स्कूल के लिए वह अपने पति की जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी दे देती है। वह नन्हे तथा मंगललाल जैसे ग्रामीण समाज के समाजवादी नेताओं से मिलकर सर्वहारा वर्ग को संगठित करती है और गांव में विद्रोह और क्रांति की हवा फैलाती है। वह स्वयं जुलूस की मुखिया होती है और अंत में पुलिस की लाठी से उसका सिर फूट जाता है और इस प्रकार अपने समाज के लोगों के हितों के लिए लड़ते लड़ते एक शहीदाना मौत को प्राप्त होती है। अशिक्षित होते हुए भी पर्वतिया की जो चेतना है वह अत्यंत ही जागृत है। एक बार जब गांव के नव युवक को अपनी कोई योजना कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, तब वह अपने सोने का मंग टीका देते हुए कहती है, इन्वर्टेड कमापन, कलुआ के बापू के नाम पर मैं मन में सैनूर पहनती हूँ, जेवर और माँ में नहीं। इन्वर्टेड कमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ नदी फिर बह चली, पृष्ठ संख्या 399। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का यह उपन्यास उनके अन्य उपन्यासों से कथ्य एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से भिन्न है। इस उपन्यास के द्वारा कृष्णा जी अपना एक अलग रास्ता चला रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यह उपन्यास विभाजन पूर्व के पंजाब प्रदेश की आंचलिक दृष्टि को लेकर अग्रसरित होता है। डॉक्टर सुषमा गुप्ता के शब्दों में, इन्वर्टेड कमापन, जिस प्रकार प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के द्वारा उत्तर भारत के गांवों का जीवंत चित्रण किया, उसी प्रकार कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाब के एक गांव के चित्र द्वारा संपूर्ण पंजाब प्रदेश का जीवन प्रस्तुत किया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हिंदी उपन्यासों में महाकाव्यात्मक चेतना, डॉक्टर सुषमा गुप्ता, पृष्ठ संख्या 239। इस उपन्यास में भाई भाई, सास बहु, देवरानी जिठानी, हिंदू मुसलमान, अड़ोसी पड़ोसी, गांव का मुखिया तथा उसका अन्य लोगों से संबंध, सौतों का पारस्परिक व्यवहार जैसी घटनाओं के अनेक किस्से कहानियों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें गोमा, होली, सबद बीबी, बेगमा, रसूली, चाची मेहरी, हकमा बीबी जैसी कई नारी पात्र आई हैं। इसमें भी अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण की बात आई है। उपन्यास का एक पात्र महीपत इस प्रकार की विडंबना को बताते हुए कहता है, इन्वर्टेड कमापन, हायो रब्बा, सदा ही धनाडो की चोट गरीबों पर, ऊपर से औलाद भड़वी ने बर्बाद कर दिया, लड़की गई साथ इज्जत ले गई। घर की लाज बचाने को सामना किया पुत्रों ने तो उन्हें कैद हो गई। गरीब की बर्बादी ही बर्बादी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ कृष्णा सोबती जिंदगी नामा पृष्ठ संख्या 263। परंतु मैलाहचल की भांति यहाँ भी ग्रामीण जीवन की उन्मुक्तता और निर्दयता के दर्शन होते हैं। पंजाब की धरती की मीठी रसीली सौंधी गंध यहाँ मिलती है। पैराग्राफ चेंज। मैला आंचल तथा परती परी कथा की तुलना में जुलूस एक लघु कलेवर का उपन्यास है। बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों के कारण बिहार के सीमावर्ती ग्रामीण तबकों में जो बदलाव आए उसका बड़ा ही सजीव एवं सटीक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। ग्रामीण तबकों की राजनीति छुट भयों नेताओं तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा हो रहा शिक्षिकाओं तथा ग्रामीण तबके के शिक्षित महिलाओं का नैतिक शोषण तालेबार गोढ़ी जैसे नौदौलीय लोगों द्वारा लोगों का आर्थिक एवं नैतिक शोषण तंत्र विद्या भूत प्रेत झाड़ फूक जैसे अंधविश्वासों द्वारा लोगों का शोषण तंत्र साधना के नाम पर नई नई स्त्रियों को फांसना जैसी अनेक प्रवृत्तियां यहाँ दृष्टिगत होती हैं। तालेबर गोड़ी निम्न जाति का है। पृष्ठ संख्या 103। परंतु अपनी मनी मसल पावर तथा तंत्र मंत्र के काल्पनिक डर से पूरे गांव पर कुंडली मार कर बैठा हुआ है। गांव के ही लोगों की सहायता से वह तंत्र साधना के नाम पर नई नई लड़कियों को फांसता है। उदाहरण स्वरूप इन्वर्टेड कॉमापन। हम जो साधना करते हैं उसके लिए औरत का होना बहुत जरूरी है। तंत्र सिद्ध करने के लिए भैरवी का होना बहुत जरूरी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ फणीश्वर नाथ रेणु जुलूस पृष्ठ संख्या 36। गुणमंती रेशमी सिंगारो गौरी ये सब गांव की लड़कियां उसकी भैरवियां रह चुकी हैं। अपनी पतोहू से भी उसका सांठगांठ चल रहा है। पैराग्राफ चेंज। मकान दर मकान वाला डूबे का एक ऐसा उपन्यास है जिसमें अगली पिछली जातियों के संघर्ष को विश्लेषित किया गया है। ग्रामीण समाज में अभी भी छुआछूत की समस्या वैसे ही बरकरार है। इसमें लेखक ने एक और नए तथ्य को लक्षित किया है कि जातिगत संस्कार अश्रवणों में भी पाया जाता है। धरती धन्ना अपना में काली इसी कारण से ज्ञानों से विवाह नहीं कर सका था। वे दोनों विवाह करना चाहते थे परंतु इस बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो जाती है, अतः दोनों ईसाई बन जाते हैं। शहर के अस्पताल में उन्हें झाड़ पोछ की नौकरी भी मिल जाती है और वे इज्जत की जिंदगी बसर करते हैं। दूसरी तरफ इस उपन्यास में ऊंची जाति के लोगों द्वारा नीची जाति की स्त्रियों के दैहिक शोषण को भी उकेरता है। बिजना डोमिनी को रत्नगढ़ हाउस के राजा से गर्व रहता है। जब वह अपने पुत्र के अधिकार की बात करती है तब नल विहार के बहाने पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। आखिर थी तो डोमनी हरामजादी, यह भी नहीं सोचती कि रानीसा के हक के लिए कितनी बड़ी बात कह दी। रानीसा हमारे खानदान की शोभा है, वह हमारी पगड़ी की कलगी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ वाला डूबे मकान दर मकान पृष्ठ संख्या 110। पैराग्राफ चेंज। उक्त उपन्यासों के अतिरिक्त निम्नलिखित कई ग्राम भित्तीय तथा मिश्रित परिवेश के उपन्यासों का विश्लेषण आवश्यकता अनुसार किया गया है। काला जल शानी उभरते प्रश्न अश्विनी कुमार अंधेरी गली का मकान जानकी प्रसाद शर्मा पारो नागार्जुन बहते रही नदियां श्री राम शर्मा युग बदल गया सोहन सिंह तर्पण शिवानी फैजा शिवानी तमस भीष्म साहनी मित्रो मरजानी कृष्णा सोबती रेतीला मोती राजेंद्र खन्ना दिल एक सादा कागज डॉक्टर राही मसूम रजा सबही नचावत राम गोसाई भगवती चरण वर्मा अपने लोक रामदरस मिश्र नरक कुंड में बास जगदीश चंद। उक्त उपन्यासों में भी ग्रामीण परिवेश की नारियों के कई रूप हमें मिलते हैं।